ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। आगामी लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में बताया कि ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव 2024 के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की भी घोषणा की।
We'll do it in 7 phases, as was done last time. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक festival है, लेकिन बस last date of withdrawal 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कार्यक्रम घोषणा के साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी कदम उठाए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन और कागज के कम से कम उपयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 21 नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन गृह कैबिनेट सचिवालय सतर्कता और निर्वाचन विभाग अपने पास रखे हैं। जनता दल यूनाइटेड से आए अधिकतर मंत्रियों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दे दी। आबकारी नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन की अनदेखी के कारण उनकी गिरफ्तारी की आशंका के बीच ये जमानत दी गई है। मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों के बाद अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा। निदेशालय ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जारी 8 समन की अनदेखी की है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासिन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये गुट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकी कारगुजारियों में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को भी 5 वर्ष के लिए अवैध संगठन घोषित किया है। भारत ने धार्मिक गुटों पर संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश के प्रति आगाह करते हुए हर प्रकार के धार्मिक भय की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लामोफोबिया से निपटने के उपायों पर एक प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव को ऐसा उदाहरण नहीं बनना चाहिए जिससे अलग अलग धर्मों से जुड़े भय को लेकर प्रस्ताव पारित करने की नौबत आए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य और लद्दाख के जाने माने बौद्ध भिक्षु लामा लोबजांग का आज सुबह नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। प्रतिष्ठित जनजातीय नेता लोबजांग ने 1984 से 19 वर्ष तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्य किया था। सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कल से 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा FLNT कराएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि करीब 37 लाख शिक्षार्थी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आकलन परीक्षा में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में FLNT आयोजित की जाएगी। आकलन परीक्षा में 3 विषय पाठन लेखन और संख्या ज्ञान शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।